तो हमने पिछली तीन आयतों में बुनियादी तौर पे एक ही चीज देखी, और वो क्या थी कि जब एक बंदा अल्लाह ताला के फैसलों को दिल की खुशी से कबूल कर लेता है, तो बज़ाहर ऐसे हालात भी लगें कि जिसकी वजह से एक इंसान ये महसूस करे कि मैं हार गया, लेकिन हकीकत में वो फतह होती है। इसका ताल्लुक सिर्फ सुलह हुदैबिया के साथ नहीं, अमली ज़िंदगी में भी आप देखें कि कई मौके ऐसे आते हैं कि हम बिल्कुल इस तरह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो बात मैंने सोची थी वो नहीं हुई। और बज़ाहर ज़िंदगी में एक ऐसे दो राहें आने लगते हैं कि इंसान कुछ चाहता है लेकिन उसके हालात जो हैं वो उसके साथ नहीं देते। मसलन आप देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई जवान बच्चा है, लड़की है या लड़का है, अब कहीं अटैचमेंट हो जाती है, वो वहाँ शादी करना चाहते हैं, अब माँ बाप मुनासिब नहीं समझते। तो इस वजह से बज़ाहर अगर ऐसे लोग ऐसे हालात में ये देखें कि इस वक्त हम अपने माँ बाप की बात मान के उनकी खुशी के लिए खामोश हो जाएं, अल्लाह ताला कभी भी इंसान को ज़ाया नहीं करता। इसलिए कभी भी आपको दबना पड़े हालात में, ख़ानदानों में, रिश्तेदारियों में, तो फ़ौरन उस वक्त चुपके से आप सुलह हुदैबिया को याद करके कहें कि अल्लाह, तेरे नबी ने भी हक पे होने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार कर ली थी ताकि फितना न फैले, फसाद ना हो, इसी तरह मैं भी खामोश रहती हूँ। तो आप देखेंगे कि उसमें से इतनी बड़ी खैर निकलेगी जो हो सकता है कि आप अपनी बात मनवा कर भी ना पा सकें। तो यही चीज़ कहने के बाद अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन की खबर दी, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी की बात की। अब इसके बाद वहाँ से जो वो हालात थे कि जिस वक़्त मुसलमान एक दरख्त के नीचे बैठकर बैत कर रहे थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल की जो बात थी वो सारी बातें चल रही थी, तो अल्लाह ताला अब उस बात को थोड़ा सा कुछ मज़ीद वाज़ह करते हैं। आयत नंबर 4 से हम अब देखेंगे, हुवल्लज़ी, वो ज़ात जिसने, अनज़ल सकीनतहू फ़ी कुलूबिल मोमिनीन, नाजिल की अपनी सकीनत, तस्कीन, सुकून, इत्मीनान ईमान वालों के दिलों में, क्योंकि ताकि लियज़दादु ईमानम मा ईमानिहिम, ताकि वो अपने ईमान के साथ मज़ीद इत्मीनान का इजाफा कर लें। वलिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वलअर्द, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमान और ज़मीन के सारे लश्कर, वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला। यहाँ बहुत ही खूबसूरत असूल है, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ईमान के अंदर इजाफे की बात की। जब यानी सुलह हुदैबिया का मौका आया तो मुसलमानों के अंदर दो मुतजाद कैफियात आईं, यानी दो अपोजिट फीलिंग्स आईं, इंतहा पे पहुंच गए, एक्सट्रीम की बात है। एक तरफ ये था कि दिल में जोश था और जज्बा था कि इन्होंने हमें समझा क्या है, हम इनको दिखा देंगे। आम इंसानी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है ना, जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे और आपके पास ताकत भी हो और पावर हो, तो आप कहते हैं अच्छा जी, इन्होंने हमें समझा ही क्या है, हम इनकी बात इनको बता देंगे। अब एक ऐसे वक्त में किसी को अपने जज्बात पे काबू पाना एक बहुत बड़ा जिहाद होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहादुर वो नहीं है कि जो मैदान में दुश्मन को पिछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे काबू पाए। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि जज्बात के वक्त में अपने जज्बात को दबाना ये बहुत बड़ी नेकी है। सहाबे कराम के अंदर जज्बा भी था, जोश भी था, बहादुरी भी थी, और वो दबते भी नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सहाबी के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अल्लाह के मामले में किसी से नहीं डरते थे। अब जब ये हालात होते हैं कि जिस वक्त लग रहा है कि आखिर हम क्यों माने, ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा फितना उठ सकता था। और आप ज़िंदगी में गौर करके देखेंगे तो अमूमन यही कैफियत होती हैं जिस वक्त लड़ाइयाँ होती हैं। आप मुतमईन होते हैं, इत्मीनान से हैं, एकदम किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, या आप जोश में आ गए, या किसी की बहुत मोहब्बत आपके दिल में आ गई, फ़ौरन उस वक्त आपकी दूसरे से लड़ाई हो जाएगी। एक बंदा जज्बात में आया हो और अगर जवाब में दूसरा भी जज्बाती होने लगे तो बाज़ दफ़ा बड़े संगीन मामले होने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ इस नेमत का तذکرہ फरमाते हैं कि देखो, मैंने ईमान वालों को इतने जज्बाती रवैयों के वक्त भी तनहा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने अपनी तरफ से ईमान और सुकून दे दिया कि ठीक है जो भी है, लेकिन अल्लाह के नबी के आगे बोलना नहीं है। और ये सहाबे कराम की कामयाबी की एक बहुत बड़ी दलील थी कि उनके दिल में किसी के लिए कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, जो ही उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात से रोकते वो फौरन रुक जाते। और आज भी यही हुक्म है, अमीर जब बंदा किसी को बना ले, अमीर से मुराद होता है कि लीडर, अपने दौर में जब हुक्मरान थे तो वो अपने वक्त के लीडर्स थे, इसी तरह नबी सल्लम जब मैदान जंग के लिए किसी को भेजते तो उस वक्त उसको बड़ा बनाते। और आपने फरमाया कि तुम में से कोई तीन भी अगर सफर के लिए जाएं तो एक को अपना बड़ा बना ले, क्योंकि सफर में आप देखिए कि बहुत सारे मसले होते हैं, यहाँ रुकें कि ना रुकें, एक कहेगा चलते जाओ, दूसरा कहेगा स्टॉप लो, एक कहेगा ये खाना है, दूसरा कहेगा ये खाना है। तो बस दफ़ा बड़ी मोहब्बत से जो सफ़र शुरू होते हैं वो बड़ी बदमजगी में ख़त्म होते हैं। तीन चार फैमिलीज मिल के जाती हैं पिकनिक के लिए, सब शौक में जा रहे हैं, बाद में पता चला कि वो एक वहाँ रुक गया, दूसरा वहाँ चला गया, और एंड पे बड़े बुरे दिल के साथ आए। हुक्म क्या है, किसी एक को बड़ा मान लो, घर से निकलते हुए डिसाइड करो किसकी बात फाइनल होगी, जो ज्यादा समझदार हो, जिसमें ज्यादा तहम्मुल हो, मामला फहम हो, उसको बड़ा बनाए, फिर जहां इख्तलाफ होने लगे उसकी बात को मानना पड़ेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत असूल होता है। अब इस मौके पे जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि देखो अपने एहराम खोल दो, अब हम नहीं आगे जा रहे, ये वक्त जो होता है ना ये किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब उसको वाकई अपने जज्बात पे काबू ना आए। लेकिन आप देखेंगे कि उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शख्स भी ऐसे वक्त में खामोश हो गए, बिल्कुल पीछे हो गए, कहा कि नहीं अल्लाह के नबी ने कह दिया अब हम पीछे होंगे। और इंसानों को अपनी जिंदगी में ऐसा रवैया बहुत बार इख्तियार करना पड़ता है। वो लोग जो कामयाब जिंदगी बसर करते हैं आप देखेंगे तो पीछे एक ये गुण जरूर होगा कि वो जब दूसरे को इश्तियाल में देखते हैं ना तो वो पीछे हो जाते हैं। बाज दफ़ा शादी होती है तो शौहर बहुत गुस्से वाले मिलते हैं, इत्तेफाक है, आप ज्यादा खुश ना हो, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, कभी कभी बीवियां बहुत चढ़ाई वाली होती हैं, शौहर बेचारे धीमे हो सकते हैं। आप देखें किसी भी कामयाब कपल की जब तारीख खोलें, किसी एक को लेके बिठाएं तो वो यही कहेंगे कि जब इसको गुस्सा आता है तो मैं चुप कर जाता हूँ, जब ये जोश में होते हैं तो मैं ठंडी हो जाती हूँ, इसके बगैर जिंदगी का सफर चलता ही नहीं है। गाड़ी बहुत जब गर्म हो जाती है ना तो आप उस पर ठंडा पानी डालते हैं फिर गाड़ी ठीक हो जाती है, और जलती पे तेल डालने का नाम क्या है, बर्न आउट हो जाएंगे। इस एक वाक्य ने मुसलमानों के लिए इतना बड़ा सबक दे दिया इसमें कि देखो जहां कभी ऐसा मामला आएगा कि जिस वक्त तुम्हें अपनी राय को पीछे लेना पड़ा तो पीछे हट जाना, गम ना करना, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल दूंगा। और बहुत मुश्किल होता है हकीकत में, शैतान का इंसान पे गलबा कब आता है, एक्सट्रीम रवैयों में, तीन चार कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीमली खुश होते हैं जब आप बहुत खुश, आप देखिए लोग अच्छे भले होते हैं, नमाज रोजा अपने आप को छुपाने ढकने वाले, जो ही उनके घरों में कोई खुशी का मौका आता है ऐसे लगता है कपड़ों से बाहर आ जाएंगे, क्या करें ये खुशी है, अकेला बेटा, अकलौता भाई, पहला बच्चा, आखिरी बच्चा, ये कह कह के ना इंसान आगे जाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम खुशी में आपके अंदर शैतान, अतर शैतान को आप पे काबू आता है। इसी तरह आप देखिए एक्सट्रीमली गम, बहुत दुख जब आता है, लोग गम की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, कपड़े फाड़ने लगते हैं, सीना को भी करने लगते हैं, बाज दफ़ा डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह कुफर तक चले जाते हैं, शैतान आ गया आपके अंदर। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए लोग अपने कपड़े फाड़ देते हैं, माएँ अपने बच्चों को पीटना शुरू हो जाती हैं, बर्तन टूटने लगते हैं, एक्सट्रीम हो गई ना। फिर इस तरह देखिए जज्बात, जैसे इमोशनली जब इंसान स्टिमुलेट होता है, जितने जिना और रेप के और ऐसे केसेस होते हैं उसमें जज्बात का गलबा होता है। इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक मियानर भी रखनी चाहिए कि अल्लाह बस मैं एक्सट्रीम्स पे ना जाऊँ। इस वक्त भी अगर आप देखें तो मुसलमानों के अंदर जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है या मुसलमानों का जो एक रवैया लोगों को दिखता है वो एक्सट्रीम का रवैया क्यों दिखता है, कि जज्बातियत में आके ऐसे ऐसे दावे कर देंगे जो कर नहीं सकते, जिसकी ज़रूरत नहीं है, कहते हैं ना जिसका जिधर सर समाता है वो वहाँ चल पड़ता है। इस्लाम बड़ा मुतहम्मिल दीन है, मामला फहमी का दीन है, इस वक्त इन जज्बात का इजहार बेहतर है या इनको दबाना बेहतर है। अल्लाह ताला कहते हैं वो वक्त जब इतना कुछ हो सकता था लेकिन ये अल्लाह की ज़ात थी कि हुवल्लज़ी अनज़ल सकीना, अल्लाह ने सुकून दिया। और जितना आपके अंदर ईमान गहरा होगा ना उतना आप अपने एक्सट्रीम रवैयों में पुरसकून रहेंगे, अपना जैसा ले सकते हैं आप बड़े आराम से, कि जब बहुत बड़ी खुशी मुझे मिलती है तो मेरा उस वक्त क्या रवैया होता है। जब मुझे कोई बहुत बड़ा गम मिलता है तब मैं कैसी होती हूँ, आप अपने आप को बिल्कुल पहचानेंगे। अगर आप ऐसे वक्तों में अपने ऊपर काबू पाने वाले हैं ना, तो ये ईमान की अलामत है। मोमिन बड़े तहम्मुल वाला होता है, वो कभी हा हू शोर और गुल और इस तरह का नहीं होता कि अपने आपको नुमाया करने वाला हो। एक मौका था तो अल्लाह के नबी सल्लम के उसे एक वफद आया, बहुत दूर से आया। अब सफ़र किया हुआ, गर्मी, पसीने, और आपको पता है कि उस वक़्त के कोई एयर कंडीशन कोचिज तो थी नहीं, बस घोड़ों और ऊँटों पे सफ़र करते हैं। अब ज़ाहिर है कि खुशी भी थी मदीना आने की। जूं ही काफिला आया, कुछ लोग भागते दौड़ते अल्लाह के नबी को मिलने के शौक में आ रहे हैं आ रहे हैं। अब वो तो मोहब्बत में थे। उनमें से एक शख्स थे, अशजो उनका नाम था, वो सीधा अल्लाह के नबी के पास नहीं आए। नीचे उतरे, पहले उन्होंने गुसल किया, कपड़े बदले, साफ सुथरे हुए, फिर बड़ी आराम की चाल चलते हुए नबी सल्लम के पास आए, मिले। फिर आपने कहा कि इन नफी कला खसलतान, ए अशजो, तेरे अंदर दो ऐसी आदतें हैं कि जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, और वो क्या है? अल हिल्मु वल ईना। हिल्म तहम्मुल, तेरे अंदर तहम्मुल है, और ईना बुर्दबारी है, ठंडा ठंडी। अब देखिए कि गरम गरम रोटी मुंह में डालेंगे तो क्या होगा, बस भूख की शिद्दत है, जज्बातियत है, भूख लगी है, पहले मुंह में डालेंगे फिर चीखेंगे, फिर माँ को कहेंगे इतना गरम क्यों पकाया था, और बीवी होगी तो फिर तो कहेंगे कि तुम खाने ही बहुत गर्म पकाती हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ऐसे वक्तों में सकीनत डाल दी, कहाँ? फी कुलूबिल मोमिनीन, ईमान वालों के दिलों पर। इससे पता चलता है कि जितना दिल में ईमान ज्यादा होता है उतनी तस्कीन ज्यादा होती है। फिर इससे ये भी पता चलता है कि अगर दिल में ईमान ना हो तो इंसान कभी भी अल्लाह के फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करता। हम सब की जिंदगी बंधी हुई है, हम सब अल्लाह के हुक्म के बंधे हुए हैं, तकदीर के पटे हमारे गलों में डले हुए हैं। हम कितने भी खुद मुख्तार क्यों ना हो जाएं, रिसोर्सफुल क्यों ना हो जाएं, हमारे हाथ में बहुत ताकत भी हो जाए, फिर भी हमें अल्लाह के फैसले मानने पड़ते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए, तकदीर पे ईमान लाना भी असल में अपनी जज्बातियत को लेट डाउन करना है। यही था किस्मत में, यही मिलना था, यही घर था, यही शौहर मिलेगा, नहीं बदल सकता। आप देखेंगे एकदम पांव जमीन पे लगने लगते हैं। इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या होता है, सिर्फ हसरतें और तकलीफें होती हैं। फिर क्या कहा, लियज़दादु ईमान मा ईमानिहिम, ताकि उनके ईमान में और ईमान का इजाफा हो। इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये है कि ईमान में कमी बेशी होती है, ये एक बहुत मशहूर मसला है फुकहा के दरमियान कि क्या ईमान एक जामद चीज़ है, बस एक ही वक्त में एक ही जैसा रहता है, या कमी बेशी होती है। जैसे ग्राफ होता है ना, उसमें ऐसे ऊपर नीचे वेव्स आती हैं, तो सही हुक्म क्या है, सही मसला यह है कि ईमान में कमी बेशी होती है। कभी कभी हमारा ईमान इतना बढ़ जाता है कि हर वक्त नेकी करने को दिल चाहता है, कोई दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं करती, लेकिन कोई ऐसे भी दिन आते हैं कि फ़र्ज नमाजें बोझल लगती हैं। आप ख़ास तौर पे देखिए कि ख़वातीन जब पीरियड्स के दिनों में होती हैं और नमाज के साथ वो 5 वक्त का ताल्लुक़ टूटा होता है तो ईमान गिरने लगता है। जो लोग कुरान की क्लासेस लेते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह कह सकते हैं कि जिन दिनों क्लास लेते हैं 3-4 घंटे डोज मिली, कुरान पढ़ा, तफसीर हुई, तजवीद हुई, तो उस दिन सारा दिन दिल खुश रहेगा। और जो छुट्टी के दिन है ऐसे ही लगता है डिप्रेशन, चाहे वो छुट्टी मना रहे होते हैं लेकिन नहुसत ही होती है, अपने को दिल नहीं कर रहा, अब ये कर रहे हैं, वही काम जो 1 घंटे में हो जाते थे वो बाज़ दफ़ा पूरे दिन में भी नहीं होते। तो ईमान घटता और बढ़ता है। और दूसरी बात इससे ये पता चलती है कि जितना इंसान नेकियों की तरफ आता है ना, उतना ईमान बढ़ता है, जितना इंसान गुनाहों की तरफ आता है उतना उसका ईमान घट जाता है, कम और ज्यादा होने लगता है ईमान इंसान का। क्या करें फिर ईमान को बढ़ाने के लिए? सवाल पैदा होता है ना कि अगर ईमान बढ़ने वाली चीज है तो बढ़ाएं, जैसे माल बढ़े तो खुशी होती है ना, तो ईमान के बढ़ने पे भी तो खुशी होगी। तो पहली चीज़ देखिए कि ईमान को बढ़ाने के लिए जिस चीज़ से इंसान मदद ले सकता है वो क्या है, अल्लाह की किताब के साथ गहरा ताल्लुक। हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है ना, कुरान पाक के बाकी सारे फवायद को एक तरफ करते हैं, उसका एक बहुत फायदा होता है कि उसके साथ ईमान बढ़ने लगता है, उसके साथ एक सकीनत उतरती है, तस्कीन होती है। कभी आप कुरान की महफिल में एक खामोशी को महसूस किया करें, ऐसे लगता है जैसे एक ओस गिर रही है, ठंडक होती है। फिर इसी तरह ईमान बढ़ाने का एक और तरीका यह कि सहाबा किराम के हालात ज़िंदगी, उनके वाक़यात को पढ़ा जाए, उनकी कोशिशों को देखा जाए। फिर इसी तरह तो आप न्यू मुस्लिम्स को मिले, कन्वर्टर्स, रिवर्ट्स लोग जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करीब से देख के आए होते हैं ना बुराई को, उन्होंने पहचानना होता है, मिम अराफू मिन अल हक, हक को पहचान के आते हैं। फिर इसी तरह कायनात पे गौर, अल्लाह ताला के नामों पे तदब्बुर और गौर करना, जितनी माल के बढ़ाने की कोशिश है ना, उससे ज्यादा ईमान के बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि माल से तो इस दुनिया में कुछ स्टेटस बढ़ जाएगा ना, लेकिन ईमान बढ़ने से इंशाल्लाह ताला आखिरत में हमारे दर्जे जो हैं वो बुलंद होंगे। फिर आगे फरमाया, वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के सब लश्कर हैं आसमान और ज़मीन में, व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला। यहाँ इस बात की क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह के लश्करों की बात, पीछे बात हो रही है सुलह हुदैबिया की, मुसलमानों की, काफिरों की, एकदम ऐसे लगता है कि ये आयत ऐसे ही आ गई, लेकिन कुरान पाक की कोई आयत भी ऐसे ही नहीं आती। यहाँ हिकमत है क्या कि ओ मुसलमानों गम न करो, देखो अल्लाह के तो लश्कर इतने बड़े हैं कि वो चाहे तो सिर्फ मच्छरों की फौज को भेज के इन मक्का वालों के नथनों में घुसा दे और सारों के सारों को खत्म कर दे। अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज के अपने घर की हिफाजत करवा ली, अल्लाह को क्या मुश्किल है। पिछले दौर में नमरूद बादशाह था, जो खुदाई का दावेदार था, एक मौके पे उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये चैलेंज किया उनको कि तुम अल्लाह को अपने लश्करों को ले आए, मैं अपने लश्करों को ले आता हूँ। कहा ठीक है, वो अपनी जो फौजें जमा कर सका की, और मुकाबले में कहा कि अच्छा बस इतना ही है, हाँ इतना ही है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब फौजें आई तो सिर्फ मच्छरों की फौज आई थी, इतने मच्छर आ गए, कहते हैं कि सूरज की रोशनी दब गई थी, यानी अंधेरा छा गया था, और उन्हीं मच्छरों ने चंद मिनटों में उसकी सारी फौज को चाट दिया, खा गए, सबका खून पीस गए। उन्हीं में से एक मच्छर जो था वो नमरूद के नाक में चला गया, और उसकी वजह से कई साल तक अजियत का शिकार हुआ, अपने सर में जूतों से मरवाता था, उसको चैन नहीं आता था। तो लिल्लाहि जुनूदु समावाती वल अर्द, हम में से कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं है, अल्लाह ताला अपनी फौजों को ले आए, अल्लाह ताला अपने लश्करों को ले आए, और वो लाता क्यों नहीं, इसलिए कि अलीमन हकीमा, जानता भी है और हिकमत वाला भी है, यानी उसको पता है कब क्या हो। हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो बस खुशी में उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वक्त से पहले सारी खत्म कर दें और जब वक्त आए तो पास ही ना बचे। अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते। अल्लाह के पास बारिश है, लेकिन कितनी बरसती है और कब बरसती है, जितनी ज़रूरत होती है और जहाँ ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला के पास हवाएं हैं, हर चीज़ है, क़यामत तक के खजाने अल्लाह ताला के पास हैं। अगर वो सारे दुनिया में आज ही दे दें तो आने वाली इंसानियत जो है वो तो भूखी मर जाए। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला किसी का मुहताज नहीं है, जब चाहे मदद के असबाब पैदा कर दे और मुसलमानों को उस रास्ते में मदद दे दे जहां आज वो आजमाइशों का शिकार है। फिर आगे फरमाया, लियुदखिलल मोमिनीन वल मोमिनाती जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिरु अनहुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, ताकि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनकी बुराइयों को दूर कर दे, और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ देखिए लफ्ज़ लाम से बात शुरू होने ली, ताके, अब ताके से पहले कुछ ना कुछ है ना, तो इसका इशारा है पीछे वाली बात की तरफ, अनजल सकीनतहू फी कुलूबिल मोमिनीन, कुछ अंदाज ऐसे होगा कि जज्बात में सुकून अल्लाह की तरफ से है, ताकि ईमान वालों को उन जन्नतों में दाखिल करें कि जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इस आयत के अंदर वही बात जो पीछे सुलह हुदैबिया के तनाजर में थी। आप अब देखिए कि इसमें हुआ क्या था कि मुसलमान जब आए थे तो कुछ खवातीन भी साथ थीं, ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके अज़वाजे मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। अब होता क्या है कि जब औरतें किसी जगह हों, और आपको होता है कि अमूमन औरतें ज़्यादा जज्बाती होती हैं, हाइपर हो जाती हैं, परेशान भी जल्दी होती हैं, खुश भी जल्दी होती हैं, हर वक्त जज्बात के अंदर रहती हैं और आगे से आगे बढ़ने लगती हैं, तो जब ऐसा मामला होता है तो औरतों को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि सुलह हुदैबिया में इससे ऑपोजिट हुआ था। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला के मशवरे पर अमल करके एक बहुत बड़े फितने से अल्लाह के नबी ने उम्मत को बचाया। हम तذکرہ कर चुके कि जब लोगों ने अल्लाह के नबी के कहने पे हराम नहीं खोले तो हजरत उम्मे सलमा ने आपको तसल्ली दी कि गम ना करें, बस आप जाके अपना हराम खोल लें, आपको करता देखकर ये रुक नहीं सकेंगे। और वाकई यही बात हुई। तो इसमें क्या बात पता चली कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे मौके पे अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों के साथ साथ औरतों को भी सुकून दिया, उनको भी इत्मीनान दिया, और उन्होंने भी इसमें चूंकि हिस्सा लिया तो इसलिए ऐसी औरतों का भी जन्नतों में हिस्सा होगा। पता क्या चला कि अमल के एतबार से औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है। बस लोग कहते हैं औरतों को चूंकि शायद दुनिया में कुछ आधे हकूक मिले हुए हैं तो आखिरत में भी आधे मिलेंगे, हालांकि दुनिया में भी आधे नहीं मिले। थोड़ा बहुत जो फर्क है मर्द और औरत में वो तो इंतजाम के लिए, घर में एक तो बड़ा हन्ना ही था ना, जो ज्यादा सॉलिड राय वाला हो अल्लाह ने वो मर्द को बना दिया। औरत को कहा तुम इतात करो, मर्द को कहा कि तुम कवाम बन के जिम्मेदारियां निभाओ। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि औरत के हकूक आधे हैं। नमाज पढ़ेगी तो उसको आधी नमाज का सवाब होगा, मर्द पढ़ेगा तो उसको एक का होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मर्द को जमात के साथ नमाज पढ़ना लाजिम किया तो औरत को फर्ज नहीं किया, वरना तो मजबूरी में होती। 5 वक्त मस्जिद में जाने के लिए एक औरत निकलती तो घर में ही मसला होता। तो अल्लाह ने तो औरतों को सहूलतें दी, लेकिन जो भी औरतें जहाँ कोई भी काम करेंगी अल्लाह ताला उनको भी वही जन्नतें देगा जो मर्दों को देगा। बाज़ लोग कहते हैं मर्दों की बड़ी बात आती है जन्नत में और इस तरह सिर्फ जन्नत में मर्द ही होंगे। तो मैंने कहा कि फिर मर्द खुश कैसे रहेंगे, अगर औरतें होंगी नहीं जन्नत में तो मर्दों को मिलेगा क्या, वो तो और अपसेट हो जाएंगे। तो कुछ औरतों को भी भेजना पड़ेगा। तो याद रखिए, बल्कि औरतें तो दुगनी होंगी। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अदना से अदना दर्जे के जन्नती को 2 बीवियां मिलेंगी, तो वो औरतें ही होंगी ना, तो औरतें तो दुगनी होंगी। लेकिन इसके साथ जहन्नुम में भी कसरत से होंगी। और आप अगर देखें तो दुनिया में भी तो ऐसे ही है ना, दुनिया में भी मर्दों से ज्यादा है औरतें। अब देखिए कि जो ही जंगें होती जा रही हैं, वक्त के साथ जो फितने आ रहे हैं, दुनिया में मर्दों की तादाद कम हो रही है। वैसे भी आप देखें कि हर पैदा होने वाले बच्चों को आप सुने तो लड़कियों की कसरत होती है। ठीक है, ओवरऑल पूरा हो भी जाता है, लेकिन बहरहाल ये है कि जिस तरह दुनिया में औरतें ज़्यादा हैं इस तरह वहाँ भी औरतें ज़्यादा होंगी। तो फरमाए वो कौन सी जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये बात क्यों कही जाती थी? क्योंकि मक्का में सहरा थे, डेजर्ट से, ना पानी ना कुछ। और जब उनको ये कहा जाए कि पानी की नहर है, तो वैसी है जैसे आपके बच्चों को कोई कह के कोक की नहर होगी, तो वो जितना इस बात से खुश होंगे उनको इस बात से खुशी होती थी कि वहां नहरों की सूरत में पानी होगा। कितनी देर? खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले इसमें। और क्यों वहां अल्लाह दाखिल करेगा या क्यों सब्र डालता है, फिर वो आ रहा है, इसका भी ताल्लुक पीछे सुकून से है। वयुकफ्फिरुन हुम सय्यातिहिम, और ताकि अल्लाह ताला इनकी बुराइयां दूर कर दे। यानी अल्लाह ताला किसी को इत्मीनान और सब्र और सुकून क्यों देता है? ताकि उनकी बुराइयों को माफ कर दे। खुलासा क्या है पूरी बात का कि कोई शख्स जितना भी अल्लाह ताला से सब्र मांगेगा, सुकून मांगेगा, उतना ही उसको दुनिया में भी सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, और इंशाल्लाह वो जन्नत में भी पहुंचेगा। और इस्लाम का तो मतलब ही पीस है, और पीस इत्मीनान सुकून का नाम है। जब इंसान ईमान लाता है ना तो वो अमन में आ जाता है। मोमिन कौन है? अमन वाला, जिसको अमन दिया गया। और आप महसूस करें जितना आप अल्लाह के दीन से जुड़ते हैं ना उतनी आपकी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। ख्वाहिश का कम होना क्या हुआ? आपके दिल को इत्मीनान है। आप सिर्फ एक दिन बाजार होके आ जाए, 2 चीजें आप खरीद के लाएंगे ना तो 3 आप पसंद करके छोड़ाएंगे। 2 के पैसे जोड़ के गए थे खरीदने के लिए और 3 पसंद करके आ जाएंगे, तो वो जब वापस आए तो वो बेचैनी आई कि खुशी आई? जो पर्स में जो चीज बैग में आ गई है उसकी तो खुशी इतनी नहीं रही, वो तो छोटी लगेगी। वो जो पीछे शोकेस में लटक रही है ना वो बड़ी प्यारी है, ये बेचैनी है ना। आप जाए ना बाजार, आपकी बेचैनियां खत्म हो गई। इत्मीनान किस चीज का नाम है? एक्सेप्टेंस। बस शुक्र अल्लाह का, जो है ठीक है, जरूरत का है ठीक है, इस्तेमाल की चीज़ है खुशी से लो, इस्तेमाल की चीज़ नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप महसूस करते हैं कि जितना हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं हम मुतमईन होते हैं, वरना सारा दिन हम खिदमत करते हैं चीज़ों की। यदि आप महसूस करें ना कि जैसे ये बेजान चीज़ें हैं ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, जूते, फिर जो भी हमारी आसाइश की चीज़ें, ये हमारी खिदमतगार है ना, अल्लाह ने ये कपड़े दिए कि हमारी खिदमत करें, कि हमें सर्दी से बचाएं। और अगर सारा दिन मैं इसकी खिदमत करती रहूं, इसको धोऊं, फिर इसको कलफ लगाऊं, अब इसको इस्त्री करूं, अब इसको पहन के अकड़ जाऊं, तो मैं इसकी गुलाम हो गई ना। और होता क्या कि आज हम गुलाम बन गए इन चीज़ों के। बाद जब अपने बच्चों से औरतें चिड़चिड़ी रहती हैं, क्यों? काम कर करके थक गई। जिस बच्चे को आपकी मोहब्बत चाहिए थी, जिसको कंपनी चाहिए थी, या शोहर, वो बेचारा बुला रहा है आपको, आए चलते हैं कहीं, कहते नहीं मुझे घर साफ करना है जी, मुझे तो अपने कपड़े धोने हैं। बेजान चीज के लिए आपने एक जानदार इंसान के जज्बात को मजरूह किया ना, तो इत्मीनान किस चीज का नाम है कि बंदा अपने हिस्से पे मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला तूने मुझे जो दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस अब हिसाब ना लेना। और तू क्या हिसाब लेगा इन चीथड़ों का? मैं तो खुद ही इनको देख के कहती हूँ कि अल्लाह ताला ये तेरे ही रास्ते के, तू ही इनको इस्तेमाल करा ले। तो नतीजा क्या होगा कि ये जन्नत जो मिलनी है वो कोई अचानक नहीं मिलनी, वो भी इसी तरह मिलनी है। दुनिया में इत्मीनान आता है, आपको दुनिया में महसूस होने लगता है कि आप जन्नत के राही हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वकान ज़ालिका इंदल्लाही फौज़न अज़ीमा, और है ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी। इसको छोटा ना समझो। तुम दुनिया में किसी एक नेमत को मिलना या एक घर का मिलना बड़ा समझते हो, लेकिन असल में अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन आयत के बारे में एक बहुत ही प्यारी रिवायत भी आती है कि जब मुसलमानों ने सूरत फतह का इब्तदाई हिस्सा सुना, जिसमें यह आता है कि लियग़फिर लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख्खर, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से कहा कि आपको मुबारक हो। देखिए खुशखबरियां भी क्या होती थी कि अल्लाह ने आपके गुनाह को माफ़ कर दिया, तो खुशी खुशी अल्लाह के नबी को कह रहे हैं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए। तो साथ ही सहाबा कराम कहने लगे, आप बताएं कि हमारे लिए क्या है, यानी आपके तो अल्लाह ताला ने गुनाह माफ़ कर दिए, तो हमें क्या मिलेगा? तो उस पर यह आयत नाजिल हुई थी कि लियुदखिलुल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनाती जन्नातिन, कि ताकि अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों और औरतों को जन्नतों में दाखिल करे। ये सही बुखारी की रिवायत है। और बास कहते हैं कि लियस दादू या यन सुरका के मुतल्लिक है, मतलब ये कि अल्लाह ताला दुनिया में खुशियाँ देने लगता है, खुशखबरियाँ मिलने लगती हैं कि तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ जाना हर एक चाहता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे लोगों का तذکرہ है कि जो अपने आप को कहते तो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन उनके काम ईमान वाले नहीं हैं, उनके दिल में इत्मीनान नहीं, खुशी नहीं, वो इस आखरत को भूल कर इस दुनिया को पाना चाहते हैं, कि जो इस दुनिया को जन्नत बनाने की ख्वाहिशों में, जो दुनिया के मुफादात को छोड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों को कुरान मुनाफिक कहता है। अब आगे कुछ ऐसे ही लोगों का तذکرہ है, वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, और ताकि अजाब दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को। कौन से थे ये लोग? अज़ानीन बिल्लाहि ज़न्न सौ, जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं, अलैहिम दाइरतुस सौ, इन्हीं पर बुरी गर्दिश पड़ गई, वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, और अल्लाह का गज़ब हुआ इन पर, वलअनहुम, और उसने उन पर लानत की, वअअद्दा लहुम जहन्नम, और उसने उनके लिए जहन्नम तैयार की, वसाअत मसीरा, और कितना ही बुरा ये ठिकाना है। इस आयत में बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे लोगों का तذکرہ है कि जो लोग मुसलमानों की तरक्की से घबराते थे। हुआ क्या कि जब हुदैबिया के सफ़र पे जाने की कॉल हुई, उस वक्त तो ये पता भी नहीं था ना कि ये हालात हो जाएंगे, वो तो सीधा सा एक उम्रा करना था अल्लाह के नबी के ख्वाब के नतीजे में। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि इस सफ़र में कोई मुनाफिक साथ शामिल नहीं हुआ, ना तो कोई उम्मीद थी माले गनीमत के मिलने की, ना कुछ और मिलना था, सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी। और मुनाफिक हमेशा वो काम करना चाहता है जिसमें कुछ दुनिया भी बने, कुछ वाह वाह, कुछ ऐसी रौनक मेला भी हो। अब हुआ क्या कि जब मुसलमान हुदैबिया के मुकाम पर रुक गए, हालात ख़राब हो गए, तो ये खबरें मदीना में पहुंची। ऐसे ना जैसे कोई हज के लिए काफ़िला यहाँ से जाए और खुदा ना खास्ता रोक लिया जाए, या उसको मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। मुनाफिक जो मदीना में थे, जब उन्होंने ये बात सुनी कि अच्छा मुसलमान पकड़े गए, अच्छा काफिरों ने रास्ता रोक लिया, तो वो तो खुशी से उछलने लगे, कहने लगे देखना अब ये वापस नहीं आएंगे। देखिए एक तो वो वक्त है ना कि मक्का वाले लड़ाई करने के लिए मदीना में आते थे, तो फिर भी मुसलमान सिक्योर होते थे अपने घरों में। गज़वे बदर में हुआ, खंदक में हुआ, उसके बनू नज़ीर में हुआ, कहने लगे अब तो मुसलमान उनके घर में पहुंच गए। जैसे कहते हैं ना, सांप के मुंह में हाथ चला गया, अब तो इनमें से कोई एक वापिस ही नहीं आएगा। खुशियां मना रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि मुसलमान ना सिर्फ वापस आए बल्कि अगले साल फिर जाने की भी बात हो गई। इस बात को देखकर उन मुनाफिकों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अल्लाह ताला ने उसी बात का तذکرہ किया कि ज़ानीन बिल्लाहि ज़न्नत सौ, ये अल्लाह के बारे में बुरे गुमान कर रहे थे। क्या था बुरा गुमान? कि मुसलमान बचकर नहीं आएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो बुराई मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं ना, अलैहिम दायरतुस सौ, इन्हीं के ऊपर इसकी बुराई पड़ेगी। इसी बात को हमारी जुबान में कहते हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। यानी ये मुसलमानों के की तकलीफ पे और इनकी आजमाइशों पे खुशियां मनाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खुद ही पकड़ लेगा और इनको पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं। ये लोग कल भी थे और ये आज भी हैं। देखिए कि जो नबी सल्लम के साथ गए थे वो सहाबा कराम थे ना, जिस तरह कल लोगों ने सहाबे कराम के बारे में बदगुमानियां की थी, आज भी लोग सहाबे कराम के बारे में बदगुमान होते हैं। और ख़ास तौर पे कुछ लोग तो कुछ मखसूस सहाबे कराम के साथ बहुत ही ज़्यादा बुग़ज़ रखते हैं, उनको गालियां तक देते हैं, उनके लिए बुरी बात करते हैं और बल्कि उनको बुरा भला कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो उनको बुरा कहेगा ना, उन पर खुद ही बुराई पड़ जाएगी, और साथ ही साथ गदीब अल्लाह अलैहिम, अल्लाह का गज़ब भी इन पर आएगा। वलानहुम, फिर उन पे लानत है। किस तरह? कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी के साथियों के बारे में कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए। बस लोग जो है ना, वो सहाबे कराम की बुराइयां टटोलते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं। यानी जैसे एक शख्स है तो वो कहने लगे कि लो तुम सहाबा की बात करते हो, ये वही थे ना जिन्होंने ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी को छोड़ दिया था और जगह छोड़ के चले गए। अच्छा, ये वही है? यानी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करने वाले। ऐसे तमाम लोगों के लिए एक ही बात है कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के लिए जो सर्टिफिकेट दिया है वो क्या है कि रदी अल्लाह अनहुम वरदुअन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। जब अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, तो आपको और मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसी तरह आप देखिए कि किसी दौर में किसी दीन वाले के साथ बुग़स, हसद जैसी बुराई का सोचना, ये भी इंसान को अल्लाह की रहमतों से दूर कर देता है। वाद लहुम जहन्नम, और उनके लिए जहन्नम तैयार की, वसात मसीरा, और ये बहुत बुरी जगह है। फिर दोबारा तकरार के लिए वही बात आ गई कि वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज, आसमानों और ज़मीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं। वो फरिश्तों के लश्कर हों, वो हवाओं के लश्कर हों, वो किसी के भी लश्कर हों, हैं सब अल्लाह के। अल्लाह ताला जब चाहे जिस अपनी मखलूक को इस्तेमाल करे और उसके साथ ही फिर उसको पकड़ ले, इसलिए कि वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, अल्लाह ताला गालिब भी है और हिकमत वाला है। यानी उसके पास सब कुछ है, वो पकड़ता नहीं है, मोहलत देता है, लेकिन जो लोग उसकी मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाते, नतीजा क्या होता है कि फिर वो और ही ज़्यादा उसकी गर्दिश में आने लगते हैं। यहाँ पे दूसरा हिस्सा पूरा हुआ।